ओम शांति। प्रातःकालीन बेला में आदरणीय शिलू दीदी जी माउंट आबू से हमारे बीच पधारे हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय दीदी, 1948 में आपका लौकिक जन्म हुआ। आपको बचपन से ही आध्यात्मिक अनुभवों के प्रति गहरी रुचि रही। 1960 में अल्प आयु में आप विद्यालय के संपर्क में आई। लौकिक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते आपने राजयोग का भी गहन अभ्यास किया। 1969 में ईश्वरीय सेवा अर्थ संस्था में समर्पित हो गए। देश के अनेक शहरों में एवं अफ्रीका मॉरिशियस में भी आपने ईश्वरीय सेवाएं देकर अनेक सेवा केंद्रों की स्थापना की। 1976 से आप मुख्यालय माउंट आबू में स्थायी रूप से रहकर राजयोग शिविरों का सकुशल संचालन कर रही हैं। आपने 5 महाद्वीपों में 70 से भी अधिक देशों की यात्राएं कर विश्वविद्यालय का परचम फैलाने के आप निमित्त बने। आप हिंदी, अंग्रेजी तथा सिंधी भाषा में आप धारा प्रवाह बोलती हैं। आप एक कुशल प्रवक्ता हैं। एजुकेशन विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आपकी वो मृदुवाणी, आप मृदुवाणी के बहुत धनी हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व से आज आप सुनेंगे परमात्मा का परिचय। हर आत्माओं के दिल में आपके लिए मान है, क्योंकि आप ज्ञान रत्नों की खान है। मुरझाए हुए फूलों को मुस्कान दे, आप में वह जान है। आदरणीय शिलू दीदी जी, आप ब्रह्मा कुमारी की शान है। तो आदरणीय दीदी का हम पुनः स्वागत करेंगे और सुनेंगे आपसे।
ओम शांति। सभी कहेंगे एक साथ ओम शांति। माताएं ओम शांति। आप सभी शांति प्रेमी और प्रभु प्रेमी आत्माएं हो और इस महासम्मेलन में ग्राम विकास की बातें सुनने के लिए, राष्ट्रीय उत्थान करने के लिए यहाँ पधारे हैं। तो प्रातःकालीन सत्रों में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग का जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसकी ही चर्चा होती है। कल आप सभी ने प्रातःकाल योगी कौन है, हम कौन हैं, ये पहचाना। योग क्या चीज है, राजयोग क्या चीज है, ये समझा। अगर अभी आपसे कोई पूछे आप कौन हैं, तो यही मुख से निकलना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूं। ये देह तो एक चोला है, वस्त्र है, पर मैं तो अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा हूं। और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक अभिनेता की तरह अपना पात्र बजा रही हूं। ये संसार मेरा घर नहीं है, ये तो एक मुसाफिर खाना है। ये सृष्टि एक रंगमंच है। हम सब आत्माएं उस परमधाम से इस सृष्टि मंच पर आए हैं। ये योग के लिए सबसे पहला आधार है, जिसमें योगी अपने आप को पहचानता है। तो योग केवल कुछ शारीरिक क्रियाओं का दूसरा नाम नहीं है, पर योग अर्थात संबंध, जोड़, मिलन। और योग का आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ। तो आत्मा को तो कल आपने समझा, लेकिन जिस परमात्मा से मिलन मनाना है उसकी पहचान क्या है, वो आज हम आपको देना चाहेंगे। वैसे तो हम भगवान को सभी याद करते हैं, जब जब दुख की घड़ी आती है, कोई कष्ट होता है, कोई पीड़ा होती है, ऐसे कोई विघ्न आता है, तकलीफ होती है, कोई समस्याएं आती है, तो हम भगवान को जरूर याद करते हैं, उनसे शक्ति भी मांगते हैं, उनको पुकारते भी हैं, प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन फिर भी हम सब की ये शिकायत है कि ये जो चंचल मन है ना, ये परमात्मा में लगता नहीं है। फिर चाहे कितनी भी पूजा पाठ, जप तप, तीर्थ यात्राएं, गंगा स्नान, न जाने क्या क्या हम करते हैं ताकि मन शुद्ध हो जाए और ये मन ईश्वर में लग जाए और परमात्मा से हम शक्ति प्राप्त करें। तो ये मन जो इतना चंचल है, वो किसी देहधारी व्यक्ति को याद करने के लिए नहीं कहा गया है कि चंचल है। मनुष्यों को, व्यक्तियों को, वैभवों को और जो अनेक संसार की बातें हैं उनको याद करने के लिए मन के लिए कभी शिकायत नहीं करेंगे कि मन नहीं लगता। लेकिन जब परमात्मा में मन लगाने की बात कही जाती है तो ये शिकायत आती है। तो क्यों ये शिकायत आती है? क्योंकि एक तरफ तो हम परमात्मा को त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं, त्वमेव माताश्च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणम, त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव भी कहते हैं, यानी सब मेरे संबंध परमात्मा के साथ हैं। लेकिन सर्व संबंध उस ईश्वर के साथ होते हुए भी ये शिकायत जो हम सबकी है कि मन नहीं लगता परमात्मा में, तो उसका कारण क्या है? तो अगर हम कारण ढूंढे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। कारण सहज भी है और उसका निवारण भी सहज हो सकता है। तो योग का वास्तव में अर्थ कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। कल जो आपने थोड़ा समझा उसको सार में हम बताना चाहेंगे। योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो जब ये जोड़ हम समझ जाते हैं तो सबसे ऊंचे से ऊंचे परमात्मा के साथ जोड़, ये वास्तव में राजयोग है, सभी योगों का राजा। क्योंकि परमात्मा जो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, उनसे मन की तार जोड़ना है हमें। मन ही वो ऊर्जा है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को यही कहा, हे अर्जुन, ये मन मेरे में लगाओ। तो मन परमात्मा में लगाना यही राजयोग है। तो वो परम सत्ता परमात्मा में मन कैसे लगे, उसकी हम कई प्रकार की विधि अपनाते हैं। भक्ति में बहुत सारी विधियां अपनाते हैं ताकि हम मन को परमात्मा में लगा सकें, लेकिन फिर भी मन नहीं लगता तो वास्तव में उसका कारण क्या है वो समझना जरूरी है। तो राजयोग हमें उसका कारण भी बताता है और निवारण भी बताता है, और इतनी सरल विधि देता है। जिस सरल विधि को हम जब मन में अपनाते हैं तो मन बहुत सहज लग जाता है परमात्मा में। तो राजयोग माना उस सर्वोच्च सत्ता से संबंध, और जो विधि है उससे संबंध जोड़ने की मन द्वारा, वो भी सर्वश्रेष्ठ विधि है। और फिर उससे जो प्राप्ति है वो भी सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। कई ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, धन धान्य से संपन्न है, सुखी परिवार है, स्वस्थ शरीर है, मन भी शक्तिशाली है, बुद्धिमान भी है, बहुत नाम मान सब कुछ है उनके जीवन में। फिर भी जब हम उनसे पूछते हैं कि आपके जीवन में तो सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, तो आप संतुष्ट हैं, जीवन से संतुष्ट हैं, तो उत्तर क्या मिलता है? हाँ, जीवन में सब कुछ तो है, परंतु, फिर परंतु कहकर के रुक जाते हैं। तो हम कहते हैं परंतु क्यों कहते हो, सब कुछ तो है, क्या कमी है? तो कहते हैं बस हमें शांति चाहिए, परंतु हमें शांति चाहिए। तो शांति आज इतनी महंगी हो गई है कि सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है। शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, जो आंतरिक चीजें हैं, सच्ची खुशी, तो शांति, प्रेम, खुशी, शक्ति, ये सब जो अनुभव करना चाहते हैं, जो अभी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी, यही वास्तव में सर्वोच्च प्राप्ति है। और अगर ये सर्व प्राप्ति है, सर्वोच्च प्राप्ति, तो चाहे दुनिया की और चीजें इतनी न भी हो तो भी हमारा जीवन बहुत संतुष्ट रह सकता है। तो वो सर्वोच्च प्राप्ति हमें राजयोग से मिलती है। तो जब हम अपने मन को परमात्मा में लगाते हैं, ये प्राप्ति हमें सहज मिलती है। लेकिन ये शिकायत क्यों है, इसका कारण क्या है? क्योंकि जब तक कारण नहीं पता चलेगा, मन क्यों नहीं ईश्वर में लगता, तब तक निवारण भी कैसे करेंगे? आज कोई बीमारी अगर है, पेट में बहुत दर्द है, अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब बहुत दर्द है पेट में, बहुत दर्द है, तो डॉक्टर कहेगा ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, बहुत सारे टेस्ट आपसे कराएगा, ब्लड टेस्ट कराएगा, क्योंकि कारण का ढूंढना है। और जब कारण का पता चल जाता है कई प्रकार के परीक्षण से, तो फिर निवारण करना सहज, उसी प्रकार की दवाई दी जाती है। तो मन क्यों नहीं लगता परमात्मा में, उसके तीन कारण हैं। सबसे पहला कारण है स्वयं का अज्ञान, और राजयोग द्वारा स्वयं की हमें पहचान मिलती है। क्योंकि परमात्मा से संबंध आत्मा का है, शरीर का नहीं है, और हम अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं, तो मन परमात्मा में कैसे लगेगा? जब हम कहते त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ये कौन कहता है? शरीर के तो माता पिता हैं जिन्होंने शरीर को जन्म दिया है, तो फिर परमात्मा किसके माता पिता हैं? जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, मर जाता है, तो उनका पार्थिव शरीर तो वहीं रहता है, लेकिन क्या कहने में आता है, हे भगवान इनकी आत्मा को शांति देना। शरीर को शांति देना ये नहीं कहते हैं, शरीर को तो शांति मिल गई, देह त्याग किया, पार्थिव शरीर बन गया, पथरा गया शरीर, मानो शरीर को शांति मिल गई। तो हम जीवन में कुछ शरीर की शांति नहीं मांगते हैं, शरीर की शांति माना मृत्यु, और मृत्यु होने के बाद फिर भी आत्मा की शांति मांगते हैं, तो आत्मा ही तो शांति मांगती है। तो जब तक आत्मा की हमें पहचान नहीं है और ये समझ नहीं है कि आत्मा का अपना मूल धर्म ही शांति है, तब तक हम चाहे कितना भी परमात्मा से शांति मांगे वो अनुभव नहीं होगी। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, शरीर का धर्म शांति नहीं है। प्रकृति से ये शरीर बना है, पंच तत्व तो हर वक्त हलचल में रहते हैं, हमेशा परिवर्तनशील है। तो इसीलिए जैसे ही हमने ये समझा मैं एक आत्मा हूं, तो वास्तव में आत्मा के सब संबंध परमात्मा के साथ है। लेकिन परमात्मा कौन है उसकी भी पहचान तो चाहिए ना। हालांकि हर जन्म में हमने परमात्मा को मात पिता कह करके याद किया है, पितुमात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवाले हो, बहुत कुछ गीत गाए, लेकिन फिर भी वो ईश्वर है कौन, वो कहाँ है, क्या उसका स्वरूप है, ये तो नहीं जाना। इसीलिए किसमें मन लगाएं ये तो पता ही नहीं चला। जैसे कुमारी होती है, अभी उसकी सगाई नहीं हुई है, कई ढूंढ रहे हैं कि कौन इसका सही वर होगा, और उसको खुद कोई नहीं पता कौन मेरा जीवन साथी है, तो मन तो भटकेगा, पता ही नहीं। लेकिन जिस घड़ी हमें पसंद आ गया, लड़का पसंद आ गया, एंगेजमेंट हो गई, सगाई हो गई, भले विवाह न भी हुआ है अब तक, तो भी मन तो लग ही जाता है। तो मन तब लगे जब पहले जिसमें मन लगाना चाहते वो है कौन, वो है कहाँ, और फिर परमात्मा की पहचान मिलने के बाद जो तीसरी बात आती है वो विघ्न रूप में, वो है कि मन इतना चंचल है, अनेक विकारों की अशुद्धि से भरा हुआ है, और उसमें हम परमात्मा को स्थान देना चाहते हैं, तो कैसे परमात्मा उसमें स्थान ले सकता है। दिवाली पर हम लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितनी सफाई करते हैं, कितनी सफाई, क्योंकि लक्ष्मी तब आएगी जब सफाई हो। अब भगवान को हम अपने मन में स्थान देना चाहते हैं और मन इतना मलिन, इतनी अशुद्धियों से भरा हुआ, तो मन में कैसे परमात्मा स्थान लेगा। इसीलिए मन का शुद्धिकरण भी बहुत जरूरी है, तब परमात्मा को हम सहज याद कर सकेंगे, मन में उन्हें स्थान दे सकेंगे। इसलिए ये तीन कारणों का निवारण चाहिए। तो पहले कारण का तो निवारण आपको मिल गया, आपको आत्मा की पहचान मिल गई, अब परमात्मा की पहचान भी हमें चाहिए। आत्मा की क्या पहचान मिली, कि आप एक ज्योति हैं और पवित्रता, ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति की स्वरूप हैं। इस शरीर में भ्रकुटी के मध्य एक चमकने वाला एक सितारा है। आपका असली धाम तो परम धाम है और ये सृष्टि तो एक रंगमंच है। अब जैसे ये मन में समझ आई तो परमात्मा के आप बहुत करीब जा सकते हैं। क्योंकि ये जो मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं, परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, कब आता है, क्या करता है, कैसे मिलता है, ये सब मन में जो प्रश्न तब तक हैं जब तक परमात्मा खुद न आकर के अपनी पहचान दे। आज तो हम उनको ढूंढ ही रहे हैं, कभी कह दिया परमात्मा तो सर्वव्यापी है, अब सर्वव्यापी है तो कहाँ उन्हें ढूंढेंगे, या तो कह दिया उसका तो कोई न नाम है न रूप है तो कहाँ उसे ढूंढेंगे, या तो कह दिया वो तो सातवें आसमान में रहता है तो भी कहाँ ढूंढने जाएंगे। मानो कि जितने भी आज दुनिया में परमात्मा के बारे में जो मंतव्य हैं, कई ऐसे मंतव्य हैं जो बिल्कुल एक दो के विरोधाभासी हैं। कभी कहेंगे ईश्वर का तो कोई नाम रूप ही नहीं है, या फिर कहेंगे सारे उसी के ही तो नाम रूप हैं, सब उसी के ही तो रूप है, वही तो सब कुछ कर रहा है। तो मनुष्य आज इतना मूंझ गया है कि परमात्मा के सत्य स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा है। कई कहते हैं कि अगर परमात्मा है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता है, वास्तव में दिखाई कैसे देगा, क्योंकि ये आंखें तो चर्म चक्षु है, ये प्रकृति की बनी हुई आंखें हैं, तो ये प्राकृतिक आंखें केवल प्रकृति को ही देख सकती है, लेकिन परमात्मा प्राकृतिक नहीं है। इसलिए प्राकृतिक आंखें जो प्राकृतिक नहीं है उसको कैसे देखेगी, देख सकेंगे, नहीं देख सकेंगे। उसके लिए तो तीसरा नेत्र चाहिए, ज्ञान का नेत्र चाहिए, और वो नेत्र हम भगवान से मांगते हैं। असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतम गमय। हे प्रभु, वो ज्ञान का ऐसा हमें नेत्र जो दो, या ऐसा ज्ञान दो जो असत्य और सत्य को समझ करके हम सत्य की ओर चलें, अंधकार से दूर होकर प्रकाश की ओर पहुंचे। जो अज्ञानवश हम देह के अभिमान में मृत्यु से भय कर रहे हैं, उस मृत्यु के भय से ऊपर उठें, अमृतत्व का अनुभव करें, अथवा आत्मा की सही पहचान हमें मिले, तो वो पहचान भी तो परमात्मा ही देगा। जैसे बच्चे की पहचान भी तो बाप ही, पिता ही देगा ना, अपनी पहचान भी पिता अपने बच्चे को खुद ही देगा, बच्चे को तो पता ही नहीं। इसलिए परमात्मा कौन है, कहाँ है, क्या उसका स्वरूप है, परमात्मा ने अपनी पहचान खुद ही दी है। अब वो क्या दी है वो हम समझेंगे। एक तरफ हम कहते हैं परमात्मा एक है, वो सत्य है, तो सत्य माना एक, जो चीज असत्य है उसके लिए तो हम बहुत कुछ बातें कह सकते हैं, पर सत्य तो एक ही होता है, वो बदलता नहीं है। तो जब सत्य एक है, ईश्वर एक है, तो उनका स्वरूप भी एक जैसा होना चाहिए, और वो ऐसा स्वरूप हो जो सभी धर्मों को मान्य हो। इसलिए बहुत सुंदर दिखाया गया मस्जिद, चर्च और मंदिर, और तीनों के अपने अपने धर्म शास्त्र हैं, कुरान, बाइबल और गीता। अब वो छह अक्षर, वो पांच अक्षर, वास्तव में इनको कम करे तो एक ही बचता है, तीनों बराबर है। तो परमात्मा तो सबका एक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो या पारसी हो, यहूदी हो, किसी भी धर्म का हो, जब परमात्मा कहता है या खुदा कहता है, प्रभु कहता है, अल्लाह कहता है, ईश्वर कहता है, वाहिगुरु कहता है, जो कुछ भी ये शब्द चाहे अनेक यूज करता हो, लेकिन वो एक के लिए कह रहा है। तो जबकि परमात्मा एक है और वो सत्य है, तो वो स्वरूप हो जिसको हिंदू भी माने, मुसलमान भी माने, ईसाई भी माने, क्योंकि वैसे ही हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, तो हम सब भाई भाई किस नाते से हैं? इस नाते से नहीं केवल कि ये भारत धर्म निरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को समान मान्यता है, इसीलिए भाई भाई है, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ है। वो आध्यात्मिक अर्थ है भाई भाई क्यों है? क्योंकि पिता एक है। अब पिता एक होगा तो भाई भाई होंगे ना आपस में, लेकिन आज भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि एक पिता को भूल गए हैं। एक परिवार में भी हम देखते हैं जब तक पिता जिंदा होता है तब तक तो ठीक है, भाई भाइयों का प्यार होता है, और जब पिता गुजर जाता है या मानो ठीक प्रॉपर्टी बांट के नहीं दी, विल जो कि उसमें संतुष्टता नहीं मिली बेटों को, तो कितना आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये सब आपस में हम क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि हम एक पिता को भूल गए हैं। अब वो एक पिता अपनी पहचान खुद देते हैं। तो आज जो दुनिया में इतनी सारी विभिन्न मतें हैं, एक कारण तो ये है कि परमात्मा को इन आंखों से हम देख नहीं सकते। अगर देख सकते होते तो विभिन्न मतें नहीं होती। और दूसरा कारण है कि परमात्मा तो भावना का भूखा है, जो जो जिस जिस भावना से उसे याद करता है उसको उसी रूप का अनुभव होने लगता है, क्योंकि भावना का भाड़ा मिलता है। और इसके कारण जो अल्प भावना जो रखी उसका भाड़ा मिल गया तो मनुष्य उसी में फंस जाता है, आगे नहीं बढ़ना चाहता है, बस समझ लिया कि समझता यही बस सब है, सब कुछ है मेरे लिए। इसी कारण हर एक की भावना अपनी अपनी, और परिणाम स्वरूप अनेक विचारधाराएं ईश्वर के बारे में हो गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। अब आप गौर से देखेंगे दो शब्द हैं, आत्मा और परमात्मा, दोनों शब्दों में समानता जरूर है, आत्मा दोनों शब्दों में है, लेकिन दूसरे शब्द में परमात्मा है, परम प्लस आत्मा, अर्थात परमात्मा भी एक आत्मा है लेकिन वो परम है। आत्मा ही परमात्मा नहीं है, लेकिन आत्मा उस परमात्मा की संतान है। परमात्मा तो परम पिता है, हम सब बच्चे हो गए, आत्माएं तो अनेक हैं, लेकिन परमात्मा तो एक है, परमात्माएं कभी नहीं कहेंगे। इंग्लिश में कैपिटल जी ओ डी लगाते हैं, और जब अनेक बताने होते हैं तो छोटा जी ओ डी लगा देते हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी और देवताएं, वो तो 33 करोड़ भी दिखाते हैं, लेकिन कैपिटल जी ओ डी के आगे एस नहीं लगता है, के बाद एस नहीं लगेगा, परमात्मा तो एक ही है। इसीलिए आत्मा सो परमात्मा कहना ये भी एक बहुत बड़ा ज्ञान हो गया। कोई भी बच्चा अपना पिता नहीं बन सकता है, अपने बच्चों का पिता बन सकता है, लेकिन पिता के आगे वो सदा ही बच्चा है। तो हम आत्माएं धर्म आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, देवात्मा, ये सब बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा ये कोई डिग्री नहीं है, ये कोई स्टेटस नहीं है, ये पद नहीं है। ऐसे नहीं कि ये 5 साल का प्रेसिडेंट का पद है और 5 साल के बाद रिटायर हो गया। परमात्मा तो सदा ही परमात्मा है, वो परम आत्मा है। किसमें परम? ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में, कर्तव्यों में, परम। जैसे किसी व्यक्ति को हम बड़ा आदमी कहते हैं, तो बड़ा आदमी का मतलब ये नहीं है कि साइज में वो बड़ा है, लेकिन अथॉरिटी में बड़ा है। इसलिए परमात्मा माना वो ऊंचे से ऊंची आत्मा, उस ऊंचे से ऊंची आत्मा को समझना है। जिस ऊंचे से ऊंची आत्मा के लिए गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। इसीलिए आत्मा परमात्मा की संतान है, बच्चा है, और बच्चा अपने पिता के आगे सदा ही बच्चा है। फिर कई कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है। हम कहते हैं अंश का भी अर्थ समझना है, अंश को एक ऐसे स्थूल रूप में न ले, क्योंकि स्थूल रूप में अंश लेना माना कोई चीज है उसमें से टुकड़े टुकड़े, वो टूट गई और उसके टुकड़े टुकड़े निकले तो बस कहेंगे फलानी का ये अंश है। आत्मा उस प्रकार से अंश नहीं है, आत्मा भी अनादि है, अविनाशी है। आत्मा कभी जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं, गीली होती नहीं। तो जब गीली हो, ये सब प्रकृति के तत्वों के साथ मिलने से आत्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, वो सदा है, थी या रहेगी। इस शरीर से पहले भी थी, शरीर के बाद भी रहेगी। तो प्रकृति के स्पर्श से जब आत्मा का कोई अंतर नहीं पड़ता, तो अंश कहने का अर्थ क्या हुआ? क्या परमात्मा के अनेक टुकड़े हो गए और वो एक अंश हुई आत्मा? इसीलिए आत्मा परमात्मा का अंश है जो समझ लिया, उसका अर्थ है ये गुणवत्ता और संख्या की जो बात है उसमें हमें यह समझना होगा कि जो परमात्मा के इतने गुण हैं, वो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिमान है। इतने गुणों का वो भंडार है, क्योंकि उनसे ही हम ये गुण मांगते हैं, हे प्रभु शांति दो, शक्ति दो। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासी हम। तो वो तो सागर है और आत्मा उन्हीं गुणों की अंश है। गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है, जो परमात्मा के गुण है आत्मा के भी वही गुण है, लेकिन परमात्मा उन गुणों का सागर है और आत्मा उस परमात्मा को कहती है प्रभु एक बूंद ही दे दो। यानी आत्मा उसी गुण की स्वरूप है, गुणवत्ता वही है, क्वालिटी इज द सेम, क्वांटिटी में अंतर है। इसीलिए आत्मा को परमात्मा का अंश कहने का मतलब कई लोग क्या उठाते, उसके टुकड़े टुकड़े। अब इतने सारे टुकड़े हो जाएंगे तो परमात्मा का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा? नहीं, आत्मा उन्हीं गुणों की स्वरूप है और जब वो गुण आत्मा नहीं अनुभव करती तो परमात्मा से मांगती है। जैसे एक रिचार्जेबल बैटरी हो, उसकी धीरे धीरे चार्ज कम होती जाती है तो फिर उसको चाहिए चार्ज, तो पावर हाउस से कनेक्ट करते हैं। तो परमात्मा हो गया पावर हाउस और आत्मा हो गई वो बैटरी। जिसको उस परमात्मा से कनेक्ट करने से चार्ज मिलेगी, बैटरी शक्तिशाली बन जाएगी। तो राजयोग वो चार्जर का काम करता है। जो आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करके आत्मा को वापस वही शक्ति जो आत्मा गंवा देती है इस भूल भुलैये के संसार में आकर, फिर से परमात्मा की याद से वो शक्ति हासिल कर लेती है। इसलिए अंश का भी अर्थ हुआ। फिर कई जब हम पूछते हैं परमात्मा कहाँ है, तो कहते हैं वो तो सब जगह है। अब सब जगह भी एक भावनात्मक बात बहुत सुंदर है। अगर हर वक्त हम यही समझें परमात्मा मेरे साथ है, तो हमें इतनी शक्ति का अनुभव होगा, इतनी होगी शक्ति मिलेगी, हम कभी भी अपने आप को उदास, हताश, निराश नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। गाते भी हैं, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये इतनी सारी जो कहावतें बनी हैं, ये बहुत भावनात्मक है कि हर वक्त परमात्मा को अपना साथी समझो, वो रक्षक मेरे साथ है। लेकिन जहां सिद्धांत की बात आती है तो हम यही कहते हैं ना, हम भगवान के घर से आए हैं, भगवान के घर जाना है, ये दुनिया तो रैन बसेरा है, मुसाफिर खाना है। तो अगर हमारे लिए, आत्मा के लिए ये दुनिया मुसाफिर खाना है, तो परमात्मा के लिए तो और ही बड़ा मुसाफिर खाना होगा, क्योंकि हम भगवान के घर से आए हैं यहाँ, और फिर भगवान के घर जाना है, जरूर उनका कोई घर होगा। तो फिर सर्वत्र का अगर आध्यात्मिक रहस्य समझ लिया तो बहुत ऊंची धारणा होगी। लेकिन अगर केवल शाब्दिक अर्थ ले लिया या केवल सिद्धांत समझ लिया तो आत्मा को कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर वो सर्वत्र है तो क्या कर रहा है सर्वत्र? कई कहते हैं वो सब देख रहा है। अब देख रहा है तो देखकर क्या कर रहा है? ये तो भक्ति मार्ग में हमारे ऋषि मुनियों को ये मालूम था कि आगे चल करके घोर कलयुग आएगा, इसीलिए भगवान सब जगह है, वो देख रहा है, पाप मत करो नहीं तो भगवान सजा देगा, ये भावना बिठाई। अनेक भक्तों को अपने इष्ट के दर्शन होते थे सब जगह, क्योंकि उनकी नजरों में वो समाये हुए थे, जैसे मीराबाई की नजरों में कृष्ण समाया हुआ था। तो यही कहती थी, जहां देखती हूँ गिरधर तू ही तू, तू ही तू। वो सदा गिरधर के साथ ही रहती थी। तो आंखों में समाना, दिल में समाना, सब जगह देख अनुभव करना, ये बहुत सुंदर भावनात्मक बातें हैं। हनुमान ने चीर फार के दिखाया कि राम मेरे हृदय में बसा हुआ है। अब ये सब बातें भावनात्मक है। कोई एक माँ होगी, वो अपने बच्चे के लिए यही कहेगी कि मेरा बेटा तो मेरी आंखों का नूर है। किसका किसी से प्यार होगा तो यही कहेगा, ये तो मेरे दिल में बसा हुआ है। तो दिल में परमात्मा को बसाना, आंखों का नूर समझकर उनको सब जगह देखना, ये बहुत ऊंची बातें हैं, ये भावनात्मक बातें। और परमात्मा इन्हीं भावों का भूखा है, वो प्रेम का प्यासा है। ये प्रेम के शब्द है, आंखों में समाना या दिल में समाना। लेकिन जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो कहाँ याद करें, मन कहाँ लगाएं? वो न पता होने के कारण मन भटकता ही रहता है। इसीलिए सर्वत्र कहने से मन नहीं परमात्मा में लगेगा, भावनात्मक स्थिति से अगर है तो बहुत सुंदर आप परमात्मा की लगन में मग्न हो सकते हैं। पर मन कहाँ लगाएं, वो एड्रेस क्या है परमात्मा की, उसको भी हमें समझना होगा। फिर कई कहते हैं परमात्मा तो हृदय में वास करता है। अब हृदय फाड़ के दिखाएं, आजकल तो बाईपास सर्जरी होती है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है, यहाँ तक कि हार्ट का भी ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, तो कहाँ भगवान दिखाई दिया। तो ये स्थूल हृदय की बात नहीं है कि कह दिया भगवान तो हृदय में वास करते हैं। फिर कई समझते हैं परमात्मा तो सातवें आसमान में रहते हैं, सातवां आसमान, सेवेंथ हेवन। अब वो कहाँ है, कितना दूर है यहाँ से, कैसे हम वहां पहुंच सकेंगे, ये तो कुछ पता ही नहीं। फिर उनको पुकारते भी तो हैं, जब जब संसार में धर्म ग्लानी होती है तब तब परमात्मा आते हैं, तो पुकारते हैं उसके लिए कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन धरती पर आ जाओ। अब बहुत अधर्म बढ़ गया है संसार में, अपना वायदा निभाने के लिए फिर से आ जाओ, तो कहाँ से उनको बुलाते हैं, कहाँ है वो जहाँ से वो आए यहाँ, तो उसको तो समझना होगा ना, तभी तो हम मन वहाँ लगा सकेंगे। फिर कई कहते हैं ये जो प्रकृति है ना यही ईश्वर है, नेचर कोई मानते हैं, ये नदी नाले तालाब या सागर पहाड़ फल फूल यही तो सब भगवान है, भगवान और क्या चीज है। अब ये प्रकृति में तो प्रकोप भी आते हैं, प्राकृतिक प्रकोप कहते हैं, लेकिन कई उसको ईश्वरी आपदाएं भी कहते हैं। अब परमात्मा क्यों ऐसी आपदाएं लाएगा, परमात्मा तो प्रेम का सागर है, वो तो सुख का सागर है, ये आपदाएं तो कितना दुख देती है। इसीलिए परमात्मा कौन है कहाँ है आज मनुष्य इतना मूंझ गया है, जो फिर कह देता है उसका तो ना नाम है ना रूप है ना गुण है, कुछ भी नहीं है। अब वास्तव में ना नाम हो ना रूप हो ना गुण हो, फिर वो चीज ही क्या है। फिर क्यों कहते हैं कि परमात्मा की स्तुति अपरम अपार है, सागर को स्याही बनाओ, पेड़ों को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ और साक्षात शारदा माँ सरस्वती देवी, ईश्वर की स्तुति लिखने बैठे तो भी पूरी नहीं होगी। फिर कह दिया नाम रूप से न्यारा, तो किसकी महिमा है वो। फिर कह देते सारे उसी के ही रूप है, तो चोरी करने वाला चोर भी भगवान हो गया, फिर पकड़ने वाली पुलिस भी भगवान हो गई, फिर उसको हाँ जेल में डालने वाला भी भगवान हो गया, फिर कचहरी में वकील भी भगवान हो गया, जज भी भगवान, सब कुछ वही एक ही व्यक्ति, एक ही क्या सबका रोल बजा रहा है क्या। नहीं, आत्मा के लिए तो कहा जाता है आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है, परमात्मा तो सदा ही मित्र है, वो थोड़ी कभी शत्रु बनता है आत्मा का। तो इसीलिए सब परमात्मा के रूप हो गए, फिर तो कौन किसको याद करे, कौन किसका ध्यान करे, कुछ इंसान को समझ ही नहीं आता। इसीलिए मन इतना भटक रहा है क्योंकि परमात्मा की सत्य पहचान नहीं है। और फिर कई तो यहाँ तक भी कह देते हैं, इतने नास्तिक हैं जो कहते हैं भगवान तो है ही नहीं। तो दुनिया में हमने देखा है दो प्रकार की मेंटालिटीज हो गई है ईश्वर के बारे में। एक वो लोग हैं जो अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, जिसने जो कुछ ईश्वर के बारे में कह दिया स्वीकार कर लिया, सत्वचन महाराज, बिना विवेक के। और दूसरा तर्क करने वाले, अगर है तो कहाँ है तो दिखाओ, कई बातें करते हैं, अगर है तो क्या करता है, इसीलिए वो तो है ही नहीं, हम जो कुछ है वो हम ही है। तो एक तरफ है अति भावना, जिससे अंधविश्वास पैदा हो जाता है और विवेक खत्म हो जाता है और उसी भावना में बैठ जाते हैं। और दूसरी ओर है इतना तर्क जो भावना ही खत्म हो गई। तो विश्वास, श्रद्धा, आस्था, ये बड़े सुंदर शब्द है और ये होनी भी चाहिए परमात्मा के प्रति, लेकिन जब अंध शब्द आ गया तो हम इससे ईश्वर से दूर चले जाते हैं, और नास्तिक होंगे तो पूरा ईश्वर से दूर चले जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, न नास्तिक है न अंधविश्वासी है, एक तीसरा मार्ग भी है, वो कौन सा होगा। वो कहते हैं अगर भगवान है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, दोनों ही ठीक है ना, लड़ते क्यों हो। वो कहे मैं मेरा भगवान, वो कहे है ही नहीं, लड़ते क्यों हो, भगवान है तो भी ठीक है ना, नहीं है तो भी ठीक है, ये ठीक है बात है, ऐसे कहना ठीक है, ऐसे कहना ठीक है कि है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। और फिर आगे क्या कहते हैं, हमारा क्या लेना देना उनसे, हमारा कोई लेना देना नहीं है उनसे। अब ये कितना बड़ा अज्ञान है, हमारा कोई लेना देना नहीं है परमात्मा से, क्यों नहीं है? बहुत कुछ लेना देना है। और इसलिए भी कहते हैं वो, क्योंकि समझते हैं कि अगर ईश्वर है तो भी यही कहेगा ना, अच्छे कर्म करो, बुरा मत करो, हाँ दुख मत दो। मैं तो वही कर रहा हूं ना, इसीलिए मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं वही कर रहा हूं। लेकिन अब एक प्रैक्टिकल बात हम सोचें, आपका बच्चा है, आपने उसको जन्म दिया, बड़ा किया, लायक बनाया, हाँ आपने उसको पद पर चढ़ाया, खूब धन खर्च करके अच्छा उसको पद दिलाया, और अब उसको जब पद मिल गया, धनवान हो गया, फिर उनसे पूछा जाए भाई आपका पिता कौन है, वो कहेगा मेरा क्या लेना देना उनसे ऐसे। और पिता को ये पता चल जाए कि मेरा बेटा मेरे लिए ऐसे कहता है, मेरा क्या लेना देना उनसे, पिता को कितना दुख होगा। जिस बच्चे को मैंने इतना पढ़ाया, नहीं तो क्या कोई आसमान से तो नहीं ऐसे पैदा हुआ, माँ बाप ने उनको गढ़ा है, और उसके लिए वो ऐसे कह दे तो माँ बाप को कितना दुख होगा। अब परमात्मा को तो दुख नहीं होगा, क्योंकि वो तो है ही सुख का सागर, उसको क्या दुख होगा अगर उनके बच्चे उनके लिए ये कहे कि है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, हमारा क्या लेना देना। लेकिन नुकसान उनको नहीं होगा, हमको होगा। आप समझ सकते हैं, अगर कोई लेना देना मेरा नहीं ईश्वर से ये कहना, हमको नुकसान होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, बताएं, होगा या नहीं होगा, क्या होगा नुकसान? क्योंकि अगर माँ बाप गरीब है मान लो, तो चलो बच्चा बहुत धनवान हो गया और अपना धन माँ बाप को नहीं देना चाहता है, मदद नहीं करना चाहता है, तो दूर हो जाएगा, कहेगा मेरा कोई लेना देना नहीं है। परंतु अगर धनवान माँ बाप धनवान है और बच्चे इतना नहीं है, तो किससे लेंगे, किससे लेंगे, माँ बाप के पास ही जाएंगे ना। तो अगर लेना देना नहीं है तो नुकसान किसको, बच्चे को ही होगा। इसीलिए कभी भी ये न सोचें कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम जानते नहीं हैं इसीलिए शायद ये कह देते हैं। और अगर हम जान जाएं तो परमात्मा पर तो हम कुर्बान जाएं, इतना हमको प्राप्ति होती है परमात्मा से। इसीलिए कहा जाता है देने वाला जब भी देता, क्या देता, छप्पर फाड़ के देता, इतना देता, देने वाला थकता नहीं, लेने वाले थक सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब संबंध होगा ना ईश्वर के साथ। अगर संबंध ही नहीं होगा तो ये कैसे हमको अनुभव होगा। इसीलिए परमात्मा को पहचानना बहुत जरूरी है। अब कैसे पहचानेंगे उनको? पहली बात, परमात्मा को पहचानने के लिए हमें ये समझ चाहिए कि परमात्मा हम उसी को कहेंगे जिसको सब धर्मों की आत्माएं स्वीकार कर सके, उस स्वरूप को। हिंदू भी उसको माने, मुसलमान भी माने, क्रिश्चियन भी माने, पारसी भी माने, यहूदी भी माने, जैनी भी माने, बौद्धी भी माने, कितने धर्म है दुनिया में, सब उसी स्वरूप को माने। इसलिए कहा सर्वमान्य, सर्व धर्मों को मान्य हो। ऐसा कौन सा स्वरूप हो सकता है जो सर्व धर्मों को मान्य होगा, उसको हम देखेंगे। दूसरा, परमात्मा उसी को ही कहेंगे जो सभी संबंधों में सबसे ऊंचा हो, सबसे ऊंचा हो। अब दुनिया में हम देखते हैं हमारे से संबंध कई ऊंचे हैं। सबसे पहले तो हमारे माता पिता, कहा जाता है इनका ऋण कभी चुकता नहीं हो सकता है, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, क्या नहीं सिखाया, सदा वो हमसे ऊंचे हैं। इसलिए मातृ ऋण, पितृ ऋण, ये बहुत मशहूर शब्द, इनका ऋण कभी चुकता नहीं हो सकता है। लेकिन उनको सर्वोच्च भी तो नहीं कहेंगे ना, सर्वोच्च नहीं कहेंगे क्योंकि उनके माता पिता भी हैं, तो उनके माता पिता उनसे ऊंचे हो गए, उनके माता पिता उनसे ऊंचे हो गए, तो सर्वोच्च सर्वोच्च तो उनको कहेंगे जिनका कोई माता पिता न हो, वो स्वयंभू हो। और परमात्मा को हम स्वयंभू कहते हैं क्योंकि अगर उसको भी किसने पैदा किया तो फिर वो उनसे ऊंचा हो गया। कई लोग पूछते हैं भगवान है तो किसने पैदा किया उसको, अब उसको किसने पैदा किया तो जिसने उसको पैदा किया उसको किसने पैदा किया, देयर इज नो एंड। लेकिन परमात्मा तो अनादि और अविनाशी सत्ता है जिनका कोई रचयिता नहीं है, तो सर्वोच्च माना जिनका कोई मात पिता या रचयिता रूप में न हो, इस शरीर का तो रचयिता है, वो हमसे ऊंचे हैं। फिर दूसरा सर्वोच्च इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो परम शिक्षक भी है, त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव, परम शिक्षक। आज हमारे जो शिक्षक होंगे वो हमसे ऊंचे हैं, जिसने मुझे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया होगा, मान लो आज भी मैं एक वाइस चांसलर बन गई, मान लो किसी यूनिवर्सिटी के, मेरे अंदर कई स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और वो मुझे मैडम मैडम कहेंगे, सर सर कहेंगे, पर जिससे हमने शिक्षा ली थी प्राइमरी स्कूल में, मेरे लिए वो अभी तक भी सर है। उनका ऋण हम चुकतू नहीं कर सकते हैं जिन्होंने मुझे अक्षर ज्ञान भी दिया। इसीलिए आचार्य ऋण उसका भी वर्णन आता है, वो भी ऋण चुकतू नहीं होता। तो सदा हमारा आचार्य हमारा शिक्षक हमसे ऊंचा है। अब परमात्मा का कोई आचार्य नहीं, कोई शिक्षक नहीं जिसने परमात्मा को शिक्षा दी हो, वो तो सर्व का सागर है, ज्ञान का सागर है। तो जीवन में तीन ऐसे संबंध है जिनसे जिनके सदा ही हम ऋणी हैं, माता पिता, शिक्षक और गुरु। गुरु के भी हम सदा ऋणी हैं, जिसने हमें ज्ञान दिया, समझ दी। अब परमात्मा का कोई माता पिता शिक्षक गुरु नहीं है, वो सर्वोच्च सर्व का माता पिता शिक्षक और गुरु है। अब उसको हमें समझना है। तीसरा, वो केवल सबसे ऊंचा ही नहीं पर सबसे न्यारा भी है, सबसे न्यारा। परमात्मा के लिए क्या कहते हैं, तुम्हारी गत मत तू ही जान, ईश्वर की गत मत सबसे न्यारी है। किस में न्यारा है वो? वास्तव में इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी हम देखते हैं ना, ये सब आपस में सापेक्ष है, इसलिए न्यारा नहीं कह सकते हैं। संसार में एवरीथिंग इज रिलेटिव, सापेक्ष। जैसे ये हॉल बहुत बड़ा है, 20,000 लोग बैठ सकते हैं, क्यों? और इनकी भेंट में और हॉल छोटे कहलाएंगे, लेकिन अगर इनसे भी कोई बड़ा हॉल हो उसकी भेंट में ये छोटा ही हो जाएगा, क्योंकि और भी बड़ा हॉल है, 50,000 भी बैठ सकते हैं स्टेडियम में, 1,00,000 भी बैठ सकते हैं, उनकी भेंट में तो छोटा ही होगा। इसीलिए बड़ा या छोटा ये आपस में सापेक्ष है, कंपेरेटिव है। लेकिन परमात्मा को सापेक्ष नहीं कहते, निरपेक्ष। निरपेक्ष माना एब्सोल्यूट इंग्लिश में कहते हैं, अर्थात जिनके समान भी कोई नहीं। छोटा बड़ा की बात तो दूर हुई, ऊंचा तो कोई है ही नहीं, पर उनके समान भी कोई नहीं। अब किस किस बात में वो सबसे न्यारा है? इस संसार में अनेक प्रकार के चक्र हैं, जन्म मरण का चक्र, आत्मा उसमें आती है। आत्मा का जन्म मरण नहीं है पर चक्र में तो आती है, देह लेती है, देह छोड़ती है, फिर लेती है, ये चक्र में आती है। और जन्म मरण के चक्र के साथ आत्मा के कई और चक्र हो जाते हैं, कर्म फल का चक्र, आत्मा उसमें आती है। जैसा करोगे कर्म वैसा मिलेगा फल, ये आत्मा के लिए कहा गया है। आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। और जिस और कर्म फल के चक्र के साथ है पाप और पुण्य का चक्र। कौन सा कर्म? या तो पाप या तो पुण्य। तो आत्मा को पापात्मा और पुण्यात्मा भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों कर्म आत्मा करती है। परमात्मा तो न्यारा है, अकर्ता अभोक्ता है। और पाप पुण्य के चक्र के साथ आता है दुख सुख का चक्र, ये भी एक चक्र है। परमात्मा दुख सुख दोनों से न्यारा है, वो तो दुख हरता सुख करता है। जो खुद दुख में आता है वो किसी को सुख नहीं दे सकता है, क्योंकि खुद ही दुख में आ गया। इसलिए परमात्मा हम उसे कहेंगे जो इन चक्रों से न्यारा हो। अब वो कौन? चौथा परमात्मा हम उनको कहेंगे जो सर्व का ज्ञाता हो। परमात्मा के लिए तीनों काल, भूत वर्तमान भविष्य काल, ऐसे स्पष्ट हैं जैसे ये वर्तमान हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं। मनुष्य आत्मा अल्पज्ञ है, वो सर्वज्ञ नहीं हो सकती है। अल्पज्ञ में कई बार अनभिज्ञ भी है, अनजान भी बन सकती है आत्मा। इसलिए कई बार हमें कोई बात समझ में नहीं आती, हम क्या कहते हैं, भगवान जाने सच क्या झूठ क्या, कहते हैं ना, वो तो ईश्वर जाने, हम तो नहीं जाने, पता नहीं सच है या झूठ, वो तो भगवान जाने। तो भगवान जाने माना वो सब कुछ जानता है। अब ये कोई भी मनुष्य ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं भगवान हूं और मैं सब कुछ जानता हूं, ये बहुत बड़ा अज्ञान हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, वो परमात्मा से अपनी भेंट नहीं कर सकता है। फिर पांचवी बात, परमात्मा हम उसको कहेंगे जो सदा दाता बन करके देता ही रहता है, जो कभी लेता नहीं है। हम ईश्वर के नाम पर करते भी हैं तो भी वो है ना, गीत है, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो, कहते हैं। अगर भगवान के नाम पर हम कुछ भी दान करते हैं तो हमें इसका बहुत बड़ा एवजा मिलता है, ऐसे नहीं कि नहीं मिलता है। तो देने वाला कौन? दाता, वो परमात्मा है, जो कभी लेता नहीं। मनुष्य तो लेते हैं, ये शरीर तो कितना लेता है। तो कोई भी देहधारी व्यक्ति परमात्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बातें उनके साथ लगेगी नहीं। तो क्या है परमात्मा का स्वरूप? अब हम देखेंगे जितने अन्य धर्म हैं, क्रिश्चियन धर्म में भी हम देखते हैं, क्राइस्ट ने कभी नहीं ये कहा कि मैं परमात्मा हूं, कभी नहीं कहा। भले क्रिश्चियन धर्म वाले उसको उस प्रकार से मान देते हैं कि ये भगवान का, फिर भी कहेंगे गॉड का बेटा है, सन ऑफ गॉड। और खुद क्राइस्ट ने क्या कहा, गॉड इज लाइट, लीड मी thy काइंडली लाइट। परमात्मा एक नूर है, प्रकाश है। सूली पर क्रॉस पर चढ़ते समय भी उसने परमात्मा को याद करके यही कहा, हे पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं जो सूली पर मुझे चढ़ा रहे हैं। तो किस पिता को क्राइस्ट ने याद किया, जो क्राइस्ट से भी ऊंचा है। फिर उसके बाद मोहम्मद ने भी कभी नहीं कहा मैं अल्लाह हूं, कभी नहीं कहा। मोहम्मद ने यही कहा नूर, अल्लाह एक नूर है, नूरे इलाही, अल्लाह अकबर कहा, सबसे ऊंचा वो अल्लाह, वो कौन है, खुद को तो पैगंबर कहा। क्राइस्ट ने खुद को बेटा कहा, सन कहा। इसी प्रकार आप देखेंगे गुरु नानक ने कभी नहीं कहा मैं परमात्मा हूं, उसने तो कहा एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर, वो परम नूर ज्योति, परम ज्योति को ही परमात्मा माना, जो एक है। तो परमात्मा हम किसे कहेंगे? और धर्मों में भी जाइए, किसी भी धर्म पिता ने खुद को परमात्मा नहीं कहा। ज़ोरास्टर दिखाते हैं, पारसियों का गुरु था, उसने भी क्या कहा, औरा मज़दा, परमात्मा एक नूर है, फायर टेंपल होते हैं पारसियों के, तो फायर ज्योति को ही माना। महात्मा बुद्ध ने भी खुद को ईश्वर कभी नहीं कहा, एनलाइटेंड सोल कहा, वो भी तो एक राजकुमार था और तपस्या की तब उसे बोध हुआ। तो तपस्या की माना किसका ध्यान किया जिससे उसको बोध हुआ? परमात्मा को तो तपस्या करने की जरूरत नहीं है। हमेशा महात्मा बुद्ध को तपस्या की मुद्रा में दिखाया है और उनके साथ महावीर जैन धर्म का स्थापक, उसको भी हमेशा तपस्या की मुद्रा में दिखाया है। तो किसका ध्यान किया इन्होंने, कभी ये सोचा? जिसका ध्यान सभी धर्म पिताओं ने किया और उनसे शक्ति पाई, वो परम पिता, वो कौन? और आगे देखेंगे, भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगम मठ है। ये ज्योतिर्लिंगम क्या है? लिंगम का मतलब होता है चिन्ह, निशानी, सिंबल। ज्योतिर्लिंगम माना ज्योति का चिन्ह। अब ये ज्योति का चिन्ह जो हम देखते हैं भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम मठ, जो सबसे प्राचीनतम मंदिर है भारत के, इन सब के जो नाम है, वास्तव में ये सब परमात्मा के गुण और कर्तव्य वाचक नाम है। आज कोई अपने ऊपर विश्वनाथ नाम रखवा ले, लेकिन विश्व का नाथ क्या बन सकेगा? वो बनेगा क्या? कई अपने ऊपर ये नाम रखवाते हैं लेकिन वो गुण तो नहीं है उनमें। तो परमात्मा की जो नाम है वो गुण और कर्तव्य वाचक नाम है। इसीलिए परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहना माना उनका जो नाम और रूप है वो संज्ञावाचक नहीं है। मनुष्यों के नाम संज्ञावाचक है, केवल वो जन्म पत्री अनुसार भाई इस अक्षर के अनुसार नाम निकालेंगे, पर वो उसमें गुण वो समाया हुआ हो वो जरूरी नहीं है। लेकिन परमात्मा का नाम गुण और कर्तव्य वाचक है। वो कौन सा नाम होगा जिसमें सारे ईश्वर के गुण और कर्तव्य समाये हुए हैं? और वो स्वरूप जो पांच बातें बताई उनसे वो मेल खाती हो। फिर हम देखेंगे भारत में कहां कहां भक्त लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। अमरनाथ भी जाते हैं, कहते अमरनाथ स्वयंभू है, टिप टिप वो एक एक बूंद पानी की गिरती रहती है और वो बर्फ बन जाती है, जम जाती है, शिवलिंग बन जाता है, वो भी स्वयंभू। उसको अगर कोई बना ले तो लोगों का आक्रोश हो जाता है। एक बार कुछ साल पहले बहुत गर्मी पड़ी थी तो शिवलिंग बन के तैयार नहीं हुआ था, तो भक्तों ने क्या किया, वो पुजारियों ने बर्फ इकट्ठी करके बना लिया शिवलिंग। लेकिन कितना विरोध हुआ, क्योंकि परमात्मा तो स्वयंभू है, वो तो अमरनाथ है, वो कभी मरता नहीं है, कभी जन्मता नहीं है। कोई मनुष्य अपने ऊपर अमरनाथ नाम रखवा ले, एक दिन उसकी अंतिम यात्रा निकलेगी तो क्या कहें, अमरनाथ जी मर गए? अमरनाथ जी मरते हैं क्या? तो ये नाम जो है गुणवाचक और कर्तव्यवाचक है। पशुपति नाथ भी हम देखेंगे, नेपाल में पशुपति नाथ है। तो जो पशु जैसी बुद्धि मनुष्य की आज हो गई है, इतना नीचे गिर चुका है, पशु से भी बदतर हो गया है, उनको भी उठाने वाला, उनको भी श्रेष्ठ बनाने वाला वो नाथ, वो परमात्मा है। अब वो कौन है? सोमनाथ, ज्ञान का सोमरस पिलाने वाला वो नाथ, जिससे जिस ज्ञान का सोमरस पीने से हमारी इंद्रियां शीतल होती है। फिर इसी प्रकार रामेश्वर, श्री राम का भी ईश्वर, श्री राम को भी रावण से युद्ध करने लिए, रावण को जीतने के लिए शिव से शक्ति लेनी पड़ी। तो श्री राम का भी ईश्वर कौन है? गोपेश्वर, श्री कृष्ण को भी असुरों का नाश करने लिए शिव से शक्ति लेनी पड़ी। तो परमात्मा तो उनको कहेंगे जिनको किसी अन्य से शक्ति लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद सर्वशक्तिमान है। इसी प्रकार शंकर को भी तपस्या में दिखाया गया है। तो शंकर किसका ध्यान कर रहे हैं, शंकर का इष्ट कौन हुआ जिसका ध्यान शंकर भी कर रहे हैं, वास्तव में वही परमात्मा है। अब उस परमात्मा को हम पहचानेंगे। शक्तियों का इतना गायन है भारत में, पर शक्तियों ने भी शक्ति कहां से पाई, कहेंगे सदा शिव से पाई, शिव शंभु कहेंगे, शिव भोलानाथ कहेंगे। अब वो शिव कौन जो वास्तव में सभी धर्म पिताओं का भी पिता है, वो परम पिता है, जिसको याद कर देवों ने भी देव पद प्राप्त किया, असुरों का नाश किया, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा कौन है उसे हम पहचानेंगे। वास्तव में जब हम परमात्मा शब्द कहते हैं तो वो भी एक आत्मा ही है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। जैसे हम आत्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा भी एक ज्योति है, लेकिन वो परम, जैसे अनेक प्रकार की कोर्ट्स होती है ना, हाई कोर्ट होगी, सेशन कोर्ट होगी, लोअर कोर्ट होती, बहुत सारी न्यायालय होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कोर्ट होगी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो इंग्लिश में भी परमात्मा को क्या कहते हैं, सुप्रीम सोल, वो भी एक सोल है, आत्मा है, लेकिन सुप्रीम है, परम है। अब उस परम परमेश्वर जिसको हम कहते हैं परम पिता, सर्व आत्माओं का पिता, जिसको सब धर्मों की पिता आत्माएं भी याद करती है, अब उस परमात्मा को हमें भी याद करना है। सन्यासी भी वास्तव में उसी को ही याद करते हैं, भले वो कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि ब्रह्म जो है वो आत्माओं का धाम है, सब आत्माएं वहीं से आती है। आदि शंकराचार्य ने भी शिवलिंग की पूजा की थी। वास्तव में जब हम शिव कहते हैं, हमारा अभिप्राय उसी ज्योति स्वरूप से है। शंकर भी उनको याद कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही उसी ज्योति स्वरूप को याद कर रहे हैं। सभी देवी देवताएं भी उसी ज्योति स्वरूप को याद कर रही है, पर उस ज्योति स्वरूप की पूजा कैसे हो, इसलिए ज्योत्र लिंगम एक प्रतीक बना करके उसकी पूजा की जाती है। लेकिन कईयों ने इसका भी अनर्थ कर दिया, लिंग शब्द को जेंडर से जोड़ दिया, पुलिंग। वास्तव में लिंग का मतलब है चिन्ह, निशानी, सिंबल, और ये ज्योत्र लिंगम, ये अंगुष्ठाकार प्रतीक, ये ज्योति की निशानी है। अगर हम उसको उस रूप से समझें तो परमात्मा को हम बहुत सुंदर रूप से पहचान सकते हैं कि परमात्मा तो एक नूर है। मुसलमान लोग कोई मूर्ति पूजा, किसी भी आकृति को नहीं मानते, क्योंकि वो जो ज्योति है वो कोई प्राकृतिक रूप नहीं है। इसीलिए कोई भी प्राकृतिक रूप होगा वो मुसलमान लोग उसके विरुद्ध हो जाते हैं। परंतु अगर मोहम्मद गजनवी को, जिसने सोमनाथ का मंदिर लूटा, उसको अगर ये पता होता लूटने से पहले कि जिस मंदिर को मैं लूटने जा रहा हूं ये मेरे अल्लाह का यादगार है, तो कभी लूटता? कभी नहीं लूटता, मेरे अल्लाह का यादगार है। लेकिन ये हिंदुओं का भगवान कह दिया तो लूटो लूटो, हमारा अल्लाह तो बहुत ऊंचा है। लेकिन ये वही है, अगर ये समझ जाता तो आज भारत कहाँ का कहाँ पहुंच जाता। तो इसीलिए मुसलमानों ने हाँ बिल्कुल क्यों नहीं होता। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कैसे क्रिश्चियंस भी उसी को मानते हैं, चर्च में मोमबत्ती जलाते हैं, कहीं पर कोई आतंकवादी कोई घटना होती है, कई लोग मर जाते हैं तो उसी स्थान पर मोमबत्ती जलाते हैं। ये मोमबत्ती किसकी निशानी है, दिया किसकी निशानी है, ये आत्मा की भी निशानी है और परमात्मा की भी निशानी है। इसी प्रकार हम देखेंगे सिख धर्म में भी ज्योति को बहुत मानते हैं, उनका सारा ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब बिल्कुल उस ज्योति की ही महिमा है, पूरी ज्योति की महिमा है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हम लोग भी यहाँ उसी ज्योति स्वरूप परमात्मा को शिव नाम से याद करते हैं। तो जब हम कहते हैं शिव बाबा, बाबा माना पिता, तो शिव बाबा माना उस परम पिता परमात्मा को हम शिव बाबा कह के उनको याद करते हैं। हम सब की बुद्धि उसी परमात्मा की तरफ ही जाती है। और अभी अभी हम कैसे उस परमात्मा को याद करें जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु है, बस उसी प्रतीक को हम याद करें। और कहाँ ले जाएं मन को, परम धाम में, शांति धाम में, मुक्ति धाम में, निर्वाण धाम में, जो हम आत्माओं का मूल वतन है, परमात्मा का भी वही मूल वतन है। तो चलिए हम उसी धाम को याद करेंगे, मन और बुद्धि को उस परम धाम में ले जाएंगे, ऐसे महसूस करें कि एक अखंड ज्योति का महतत्व है उस परम धाम में। हम सब आत्माएं ज्योति स्वरूप विराजमान है और हम सब के सामने वो निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा विराजमान है। और अधिक स्पष्टीकरण आपको कल सुबह के सत्र में मिलेगा। अभी इतना ही कि हम आत्मा हैं और हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं, वो शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप हूँ, वो प्रेम का सागर है, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, वो परम धाम का निवासी है, मैं आत्मा भी वहाँ की निवासी हूँ, और मन बुद्धि को इस देह और देह की दुनिया से उपराम करके उस परम धाम में मन को परमात्मा में लगाना है। तो चलिए हम वही अभ्यास करेंगे इस समय 3 मिनट के लिए हम अभ्यास करेंगे और महसूस करें। ये लाल प्रकाश हमें संकेत दे रहा है कि इस साकार दुनिया से दूर जाएं उस अखंड ज्योति की दुनिया में, ब्रह्म महतत्व की दुनिया में, जहाँ चारों ओर सुनहरा प्रकाश है, असीम शांति है, ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा का प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है। परमात्मा जो रूप में बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान अनंत शक्तिशाली है, उस पिता परमात्मा की मैं आत्मा संतान हूँ, मैं भी शांत स्वरूप शुद्ध स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। और ये चिंतन करते करते परमात्मा के गुणों में खो जाएं। आत्मा परमात्मा के गुणों में विलीन हो जाए, समा जाए। और असीम शांति शक्ति का अनुभव करे। शिव पिता के प्रेम में मग्न हो जाए, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो सर्व गुणों का सागर है, दाता है, परम पवित्र है। शांति के सागर पिता की संतान, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। खो जाए उस शांति के सागर में। जैसे बूंद सागर में समा जाती, मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा जाऊं। देह और देह की दुनिया से एकदम परे प्रकाश की दुनिया में परम पवित्र परम आत्मा शिव पिता के साथ कितनी शांति का अनुभव कर रही हूँ। शिव पिता का सानिध्य पा लिया, उस ज्योति स्वरूप से निकलती हुई शांति की किरणें, प्रेम की किरणें, शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा को भरपूर कर रही है। और वो शक्ति पाकर मैं आत्मा संपन्न हो रही हूँ। धीरे धीरे इसी शक्ति को खुद में समाते जाए, उसमें विलीन होते जाए और भरपूर होते जाए। फिर वापिस साकारी लोक में लौटे अपने भौतिक शरीर में वापिस आए और प्रकृति के मध्य विराजमान होकर इंद्रियों द्वारा कर्म करें, तो आपका एक एक कर्म कुशल होगा, श्रेष्ठ होगा, सार्थक होगा, सफल होगा। यही राजयोग की सिद्धि है, यही सर्वोच्च प्राप्ति है। ओम शांति, ओम शांति, ओम।
शांति। कोई भी भाई बहने उठे नहीं, जो उठ रहे हैं उनसे मेरा नम्र अनुरोध है, 2 मिनट सारी सूचनाएं सुन करके फिर जाएं। हम सभी आदरणीय शिलू दीदी जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं।